2005 चला गया, आज 2013 है, मैं वापस अपने घर लौट आ गया। जिनके साथ मेरा बचपन गया वो चेहरे कुछ गिने चुने पहचानने में आ रहे हैं, बाकी जितने भी भक्तों का समुदाय बढ़ गया है, कुछ नए चेहरे हैं तो कुछ पुराने हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि विदाउट आचार्यास देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड, आचार्यों के बिना भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान कहते हैं गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, काफी फेमस श्लोक है ये। मैं आता हूं, मैं दुष्टों का संहार करता हूं और साधु संतों की रक्षा करता हूं। भगवान के धराधाम पर अवतीर्ण होने के दो कारण होते हैं, एक मुख्य कारण है, एक गौण कारण है। मुख्य कारण क्या है? दुष्टों का सर्वनाश। और गौण कारण क्या है? भक्तों को आनंद देना। यदि भक्त ही ना हो तो भगवान के अस्तित्व के विषय में कौन किसे बताए, कौन समझे कि भगवान कौन है, वो कहाँ रहते हैं, वो कैसे हैं, उनके अवतार क्या हैं, उनका स्वरूप क्या है। तो अद्वैत आचार्य जी का जो योगदान है वो हमारे गौड़ीय वैष्णव परिवार के लिए, भक्तों के लिए, इस पूरे मानव समाज के लिए ऐसा योगदान है जिसके विषय में यदि वर्णन किया भी जाए तो भी बहुत कम है। अद्वैत आचार्य जी ने भगवान का आह्वान करते हुए भगवान को धराधाम पर बुलवाया। जब उन्होंने देखा कि संसार में प्रत्येक जीव विषासक्त हो चुका है और इस जीव में यदि वस्तु स्थिति में किसी की कमी है तो वह है कृष्ण भावनामृत की। इस जगत में सब कुछ है, ऐश्वर्य है, धन है, नाम है, शौहरत है, सब कुछ है। दो वस्तुओं की कमी, एक ज्ञान की, एक प्रेम की। ज्ञान व्यक्ति के पास होना चाहिए, वो क्या? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और प्रेम, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करने की कला सीखे। अब हम भगवान से प्रेम कैसे कर सकते हैं? एक व्यक्ति आकर बोलता है कि प्रभु जी ये तो मुझसे प्रेम ही नहीं करता। जब एक जीव दूसरे जीव में कृष्ण का दर्शन करेगा, भगवत गीता में भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मिणे गभी हस्तिनी सुनी छे वाकेश पंडित समदर्शिना। पंडित समदर्शिना, वो पंडित कौन? जो कण कण में, अणु में, रेणु में, प्रत्येक जीव में, चाहे वो पशु हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, मेरा दर्शन करता है, उसे पंडित समझना चाहिए। न कि वो अरे ओम समर्पयामि, अच्छा गंध पुष्प के साथ फूल अर्पण कीजिए, नहीं, वो पंडित नहीं है। पंडित वो है जो कण कण में कृष्ण का दर्शन करे। हम कृष्ण को श्री प्रभुपाद जी ने एक सबसे पहला ग्रंथ निकाला था, कौन सा निकाला था? कृष्णा पुस्तक निकाला था। कितनों को पता है कृष्णा पुस्तक के विषय में? श्रीमद् भागवत का दशम स्कंध है। हम कृष्ण को कैसे जानते हैं? इस कृष्णा पुस्तक के अध्ययन के द्वारा। और प्रभुपाद जी कृष्ण को कण कण में देखते थे। तो यदि प्रभुपाद जी ना होते तो आज हमें कृष्ण भक्ति कौन प्रदान करता? तो उसी तरह से अद्वैत आचार्य जी ने शालिग्राम की पूजा अर्चना की तुलसी एवं गंगा जल के साथ। तुलसी पत्र अर्पण किया। भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम एवमे भक्त्या प्रेषी तदा भक्त्या उपहर्ताम अश्नामी प्रयतात्मना। चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, यदि वो मुझे पत्र पुष्प या अगर वो भी ना हो, यदि जल भी अर्पित करता हो तो मैं उसकी भावना को, उसकी भक्ति को स्वीकार करता हूं। महाभारत में इसका प्रसंग आता है। विदुरानी के पास जब भगवान गए तो 7-star ट्रीटमेंट करके रखी थी दुर्योधन ने भगवान के लिए। तनिक भी प्यास लगे तो हस्तिनापुर का सबसे अति सुंदर कोला हो या जूस हो या कुछ भी हो, भगवान पीछे मुड़े तो जूस की गाड़ी सामने आए, कुछ खाना हो तो सामने आ जाए, भगवान को मांगना ना पड़े। परंतु भगवान ने कुछ नहीं खाया। बोले दुर्योधन एक बात बताओ, विदुरानी का घर कहाँ है? मैं सीधे उनके घर पे जाना चाहता हूं। उस समय विदुरानी स्नान रही थी। भगवान ने दरवाजा खटखटाया। विदुरानी पूछती है कौन? बाहर से कृष्ण बोलते काकी मैं कृष्ण। यहां भगवान अपनापन जताते हैं, काकी मैं कृष्ण। किंतु जब उन्होंने हस्तिनापुर में जब अपना आगमन किया था तो उनकी पूरी MBA, BBA, फिजिक्स सारी डिग्रियां बोल दी गई थी। सुदर्शन चक्रधारी, गोपीचंद वल्लभ, द्वारका नाथ, सब कुछ बोल दिया। पर यहां जब वो आए विदुरानी के समक्ष, उन्होंने क्या बोला? मैं कृष्ण। कृष्ण नाम सुनते ही विदुरानी अपने होश आवास खो बैठी। उनको विश्वास नहीं हुआ कि कृष्ण आए हैं। फिर से उन्होंने पूछा, फिर से बोला भगवान ने, काकी मैं कृष्ण बोल रहा हूं, दरवाजा खोलोगी? तब काकी दौड़े दौड़े आई, सूदी बुदी भी नहीं रही, नग्न अवस्था में थी। भगवान ने अपनी आंखें मूंद ली और अपने कंधे से पीताम्बर निकाला और उनके ऊपर डाल दिया। फिर विदुरानी अंदर गई, फटाफट साड़ी वाड़ी पहनकर बाहर आई और जो बैठने की चारपाई होती है वो उल्टा करके दे दिया, बैठने की जगह नीचे पैर ऊपर, भगवान बैठ गए। भगवान उस पर भी बैठकर उस आनंद का अनुभव करते हैं जो कि वो रुक्मिणी के मखमल के बने बिस्तर पर बैठकर भी उनको वो आनंद नहीं मिलता। उसे काकी बहुत भूख लगी है, द्वारिका से हस्तिनापुर चला है, गुजरात से दिल्ली, कुछ खाने के लिए है तो दे दो। अंदर से केले लाए, केले के छिलके निकाले। कृष्ण कौन है? त्रिभुवन भुवन सुंदर। रुक्मिणी देवी जब पत्र में लिखती है तो बोलती है त्रिभुवन भुवन सुंदर, उनके जैसा सुंदर और कोई नहीं है। और ऐसे सुंदर को देखने के पश्चात वो मंत्रमुग्ध हो गई और भगवान को केले के छिलके खिलाने लग गई। और भगवान केले के छिलके खाए, आराम से खा रहे, आंखों से वो भी रो रहे हैं, ये भी रो रही है। बीच में विदुर जी आ गए, अरे 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 ऐ समझा करो ना तुम्हें नारायण आव से घरे है। ज्ञान की तलवार ने फटाक से भाव को काट दिया। जहां फिलॉसफी आ गई, ज्ञान की तलवार ने भाव के इसको काट दिया। भगवान बोलते काका एक बात बताओ, थोड़ी देर लेट आ सकते थे, कुछ जल्दी कैसे आना हुआ? जब भाव शिखर पे पहुंच गया था तो यही यहां भगवान ने अद्वैत आचार्य की जो पुकार थी उसको स्वीकार कर लिया। तुलसी की महिमा बहुत बड़ी है। इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने तुलसी की आराधना करने की जो प्रणाली सुबह सुबह निकाली वो बहुत गुह्यतम है। पद्म पुराण में राधा रानी कार्तिक माह में एक महीने के लिए श्रीमती तुलसी महारानी की आराधना करती है और कार्तिक मास के अंत में तुलसी देवी गोलोक से गरुड़ पर बैठकर आती है और हुबहू तुलसी महारानी का जो गुनारू वर्णन जो पद्म पुराण में मिलता है वो ऐसा है जैसे साक्षात कृष्ण राधा रानी के सामने खड़े हो। 19-20 का भी 19-20 का भी अंतर नहीं है। तुलसी महारानी आती है, राधा रानी को अपनी गोद में बिठाती है, उनके माथे का चुम्बन लेती है और पूछती है कि हे वृषभान लाली क्या चाहिए, बोल। बोलते मुझे कृष्ण के साथ वास चाहिए। बोलते तथास्तु, तुझे प्राप्त हो जाएगा। तुलसी सदैव भगवान के श्री चरणों में विराजमान होती है। वो गोविंद प्रदायिनी है। बॉम्बे में आप लोगों ने जाना पुष्टि मार्गी, कई लोग जानते पुष्टि मार्गी, कितने जानते हैं पुष्टि मार्गी? श्रीनाथ जी पुष्टि मार्गी जानते हैं ना? पुष्टि मार्ग में यदि आप जाओ तो वो यमुना महारानी की पूजा करते हैं। यमुना महारानी उनके लिए भक्ति प्रदायिनी है। वैसे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार तुलसी महारानी जो है वो हमारे लिए भक्ति प्रदायिनी है। तुलसी की यदि सेवा करें और आपके घर में तुलसी हो, तुलसी के सामने बैठकर यदि आप जप करो तो निश्चित रूप से तुलसी आपके हर संकट का निवारण भी करती है और मुख्यतः आपको गोविंद का वास प्रदान करती है। राधा रानी ने जब तब तुलसी महारानी की आराधना की तो सोचो ये शिक्षाएं सारी हमारे लिए हैं। अद्वैत आचार्य की पुकार भगवान ने सुन ली और भगवान ने कहा कि मैं इस धराधाम पर अवतीर्ण हो जाऊंगा, आप निश्चिंत रहो। अद्वैताचार्य कौन है? गुरु है। गुरु क्या होता है? आश्रय विग्रह। और कृष्ण क्या होते हैं? विषय विग्रह। गुरु आपको बताते हैं कि हमको किसका ध्यान करना है। विषय संसार में बहुत है किंतु वो क्षणभंगुर है। मुख्य जो केंद्र विषय है वो है कृष्ण। कर्षति आकर्षति इति कृष्ण। और गुरु का आश्रय जब एक जीव धारण करता है तो गुरु उसे कृष्ण के पास जोड़ देता है, कृष्ण के साथ उसका संपर्क बना देता है। तो अद्वैताचार्य जो है वो हमारे गुरु हैं। अद्वैत आचार्य महाविष्णु एवं शिव, आजकल एक सीरियल आ रहा है ना टीवी पे, देवों के देव महादेव, किंतु महादेव जो है वो श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध के अनुसार महासंकर्षण भगवान का जो विस्तार है यानी बलराम जी, उसका ध्यान करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उन्हीं को अपना इष्ट मानते हैं। उन्हीं महादेव और जो महाविष्णु है उनके अंश है अद्वैत आचार्य। जैसे चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के युगल रूप है, वैसे ही अद्वैत आचार्य जो है वो महादेव और महाविष्णु के युगल रूप है। ललिता सखी भी अगर देखा जाए तो राधा कृष्ण का युगल रूप है। चैतन्य महाप्रभु के पश्चात ललिता सखी जो है वो भी राधा कृष्ण की युगल रूप है। ललिता सखी राधा रानी की शिक्षा गुरु है, जो राधा रानी को आध्यात्मिक स्तर पर भोजन बनाना, क्रोध करना, मान भाव जिसे कहते हैं, और ईर्ष्या, ईर्ष्या ये आधुनिक संसार की ईर्ष्या नहीं, उस जगत की ईर्ष्या। जब राधा रानी अपना ड्रेसिंग कर रही है, रेडी हो रही है कृष्ण से मिलने के लिए, और कृष्ण दूर कुंज में बैठे बांसुरी बजाते हैं, और वो बांसुरी की ध्वनि सुनकर राधा रानी जैसे हटाट के उठती है, ललिता बोलती है बैठ, कहां जा रही है, उसको बजाने दे बांसुरी, तू पहले बन ठन और फिर जा, बैठने उसको रुकने दे, पांच मिनट नहीं रुक सकता तुम्हारे लिए, बैठने दे उसको, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम इतनी इंपॉर्टेंट हो, बैठो नीचे। ये ललिता सखी है। और यदि राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी है तो रघुनाथ दास गोस्वामी ललिता अष्टकम में लिखते हैं कि ललिता सखी के थ्रू यदि राधा रानी के पास जाओगे तो राधा रानी उस पुकार को कभी अनसुनी नहीं करेगी। इसीलिए आचार्यों का जो प्राधान्यता है हमारे इस गौड़ीय वैष्णव परंपरा में वो बहुत महान है। भक्ति उपदेश विणु तहार नहीं कार्य, अतएव नाम होइले अद्वैत आचार्य। जिनका और कोई कार्य नहीं है, केवल भक्ति का ज्ञान लोगों के बीच में बांटना हो, और जो इसीलिए उनका नाम क्या है, अद्वैत आचार्य, जो भगवान हरि से अभिन्न है, अद्वैत माने द्वैत बिना, अभिन्न, जो भगवान हरि से अभिन्न है वो अद्वैत। और चूंकि वो भक्ति के ज्ञान को जनमानस के बीच में बांट रहे हैं, गुरु है, इसलिए उनका क्या बोला गया है, आचार्य, अद्वैत आचार्य। अब आपको पता चल गया होगा उन्हें अद्वैत आचार्य करके क्यों बुलाते हैं। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को धराधाम पर आने के लिए कहा। गर्ग संहिता में वर्णन आता है, जैसे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में दिया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उसी की पुष्टि गर्ग संहिता में होती है कि सारे देवता क्षीर सागर पे पहुंचते हैं, और क्षीर सागर पे चतुर्भुज रूप नारायण बोलते हैं कि देखो मेरे बॉस के पास आपको चलना पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोलते हैं आपका भी कोई बॉस है क्या, मैं तो आपके नाभि कमल से प्रकट हुआ हूं। बोले हाँ है। वो उन्हें वैकुंठ जगत लेकर गए, वहां आठ हाथ वाले नारायण बैठे हुए थे। बोले मेरे बॉस के पास चलना पड़ेगा। अब तो सबके छक्के बक्के छूट गए। बोले आपका भी कोई बॉस है। बोले हाँ है। तो भगवान ने जब वामन अवतार धारण किया था तो अपने पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड को छेद दिया था, आज भी वो छेद है। ये नेशनल ज्योग्राफिक चैनल आपको नहीं दिखाएगा क्योंकि विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचता है, विज्ञान सीमित है। और उस छेद से विरजा नदी निकलती है जो कि एक समय में पहले गोपी थी, और उसने भय के मारे नदी का रूप ले लिया तो राधा रानी ने उसको श्राप दे दिया, आज के बाद तुम नदी के रूप में रहना। तो वो नदी के रूप में बहती है। समय इतना नहीं है, मुझे पहले ही बोला गया प्रभु जी उपास है, भूख ज्यादा लगी है, इसलिए कथा जल्दी खत्म करो, ये फटाफट भाग रहा हूं। तो वहां से वो होते हुए गोलोक पहुंचे। गोलोक कमल के समान है, अनंत शेष श्वेत वर्ण का सर्प है जिसके सहस्त्र फन है। अनंत शेष की गोद में गोलोक धाम स्थित है। सात द्वार है, हर द्वार पर दो दो गोपियां लट लेकर खड़ी हैं, ये हट्टी कट्टी, और हर एक के हाथ में बड़ा बड़ा लट है। तो जैसे सब लोग आ गए तो शतचंद्रानना जो मुख्य गोपी थी वो देखकर हैरान हो गई, आज पूरी जीबीसी इकट्ठी होकर आ गई, क्या बात है, हैं? प्रणाम लिया। बोले ठाकुर जी से मिलना है। इंद्र को लगा मेरे को प्रणाम क्यों नहीं किया। शतचंद्रानना बोलती है वो विरजा नदी देख रहे हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड एप्पल की तरह तैर रहे हैं, हर ब्रह्मांड से कोई ना कोई इंद्र आता है, तुम कौन से ब्रह्मांड के इंद्र हो? बोला अच्छा ऐसा भी है क्या? बोले घर के बाहर निकलो तब पता चलेगा। तो सोचो, और फिर जब एक एक पट खुला तो देखा ललिता विशाखा, आगे चल के राधा गिरधारी मंदिर जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा और यहाँ ललिता विशाखा का भी आगमन होने वाला है। ललिता विशाखा द्वारा सेवित थे राधा माधव। यहाँ राधा माधव देवताओं को देखकर प्रसन्न चित्त होते और भगवान माधव कहते हैं कि मेरा अवतार लेने का अब समय तो है, किंतु मैं अवतार नहीं लूंगा, मैं स्वयं धरती पर आऊंगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कृष्ण भगवान स्वयं। राधा रानी बोलती है चूंकि पर मैं नहीं आऊंगी। बोले क्यों? देखो सीधी सी बात है, एक तो वहां गोवर्धन नहीं, यमुना नहीं, कदम्ब नहीं, ग्वाल बाल नहीं, गाय नहीं, मैं आकर कहां क्या करूंगी? भगवान ने बोला इतनी सी बात। तो उस गोलोक का 84 कोर्स भगवान ने उठाया और इस धरती पर रख दिया, जो कि ये भौम वृंदावन है, वो गोलोक वृंदावन है। इसलिए कार्तिक के महीने में सारे भक्त लोग 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं और तब राधा रानी का इस धरती पर आगमन हुआ। बोलती है एकांत स्थान चाहिए जहां आपके साथ रास कर सको। तो राधा रानी की प्रसन्नता के लिए भगवान के हृदय से क्या प्रकट हुआ? गिरिराज गोवर्धन। तो इस तरह से उन राधा रानी का आगमन हुआ, भगवान ने यहां लीलाएं की। भगवान के चरणों से गंगा एवं यमुना का प्रकट हुआ। भगवान के जो हिप्स है नितंबर, यहां से निकुंज प्रकट हुआ। घुटनों से वृंदावन प्रकट हुआ, यहां से मथुरा, यहां से द्वारका, यहां से नंद, यहां से उपनंद। मन से गाय एवं बैल प्रकट हुए, यहां से श्रीराम सखा प्रकट हुए, यहां से राधा रानी प्रकट हुई। राधा रानी के यहां से ललिता विशाखा प्रकट हुई और भगवान के जो पोर से जहां से पसीने निकलते यहां से ग्वाल बाल प्रकट हुए और राधा रानी के जो जहां से छिद्र से पसीने निकलते वहां से असंख्य गोपियां प्रकट हुई। तो इस तरीके से उन्होंने गोलोक का निर्माण किया और ऐसे श्री भगवान को अद्वैत आचार्य केवल एक तुलसी पत्र से धरती पर उनको बुला रहे हैं। तो अद्वैत आचार्य जी का जो योगदान है वो हमारे इस गौड़ीय वैष्णव समाज के लिए बहुत महान है। 100 वर्षों के बाद जब प्रथम बार कृष्ण गोपियों से मिलते हैं तो वही भगवान ने मुकुट पहना हुआ है, बाल कंधे तक है। भगवान वृंदावन में 3 चीज नहीं करते हैं, बाल नहीं काटते, सिले हुए कपड़े नहीं पहनते और पैर में जूती नहीं पहनते। पर द्वारका में जाने के बाद फुल्ली एरिस्टोक्रेटिक, राजवी वस्त्र, हाथ में तलवार, भगवान की तलवार का नाम नंदकी है। और गोपियों को, राधा रानी को जब पहली बार देखते तो राधा रानी बोलती है ना ना ना, ये मेरा कृष्ण नहीं हो सकता, छोड़ दे ये सब आडंबर, वापस वृंदावन चल। कृष्ण बोलते अब तो मेरी पटरानियां हैं 16108, सबके पुत्र हैं, कारोबार काफी बढ़ गया है। तो विशाखा जी को क्रोध आता है। विशाखा बोलती है मैं तुम्हें शाप देती हूं, आग लगे तेरे गृहस्थ जीवन को, तुझे कभी गृहस्थ जीवन का सुख नहीं मिलेगा। और चूंकि आज राधा रानी तेरे लिए तड़प रही है, तू राधा के भाव में तड़पेगा। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उनको गृहस्थ जीवन का अधिक सुख नहीं मिला और वो राधा रानी के तड़प रहे थे। राधा रानी के अंदर 2 प्रकार के भाव हैं, एक मदयित भाव, एक मंदनाक्य महाभाव। मदयित भाव का अर्थ है मैं उनकी हूं और मंदनाक्य महाभाव का अर्थ है वो मेरे हैं। और राधा रानी जानती थी कि ये मंदनाक्य महाभाव यदि श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर प्रविष्ट हो गया तो वो जहर बन जाएगा, इसलिए वो स्वर्ण कांति के रूप में उनके ऊपर कवच के भांति आ गई। और ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण का युगल रूप है उनको अद्वैताचार्य यहां बुलाते हैं। श्रीमद् भागवत में पहले ही इसका श्लोक आता है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगस्त्र पार्षदम, कि भगवान यजंती युग संकीर्तने प्राय यजंती सुमेधसा। सुमेधसा जो बुद्धिमान लोग होंगे वही इस हरिनाम संकीर्तन में भाग लेंगे और भगवान अपने पार्षदों सहित इस धरती पर प्रकट होंगे। 2 प्रकार के पार्षद होते, एक नित्य पार्षद, एक प्रकट पार्षद। नित्य पार्षद का अर्थ है भगवान अपने पार्षदों साथ धरती पर आते हैं और फिर उनके साथ वापस अपने धाम जाते हैं। प्रकट पार्षद का अर्थ है ब्रह्मांड टू ब्रह्मांड भगवान ट्रेवल करते हैं। भगवान को जब इस धराधाम से जाना था, श्रीमद् भागवत में वर्णन क्या आता है कृष्ण स्वधाम गमन का, कि भगवान स्वर्ग शरीर ऊपर गए और देवता देख भी नहीं पाए, ब्रह्मा और शिव हल्की से उनको कई तेज नजर आया। महाभारत में क्या वर्णन आता है कि कृष्ण बलराम के तथाकथित शरीरों की अंत्येष्टि क्रिया अरण्य की थी, और गर्ग संहिता में वर्णन क्या आता है 1200 पहियों वाला रथ राधा रानी बुलाती है धरती पर, और कृष्ण नंद बाबा यशोदा मई पूरे ब्रजवासी हर कोई इस रथ में बैठकर वापस गोलोक चले जाते हैं। तो भगवान की लीलाओं को कौन समझ सकता है, अवान मानस गोचरा, जो हमारी बुद्धि से परे हैं, ऐसे हैं श्री भगवान। उनको केवल एक तुलसी पत्र से अद्वैत आचार्य धरती पर बुला रहे, इसके पीछे शिक्षा क्या है? इसके पीछे ये शिक्षा है कि यदि भक्त की भक्ति सच्ची हो, इस पूरे जगत की सबसे बड़ी शक्ति जो है वो है भक्ति, और जीव इस भक्ति के द्वारा ब्रह्म को भी धरती पर बुला सकता है। भगवान गीता में कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, मेरे प्रति शरणागत हो जाओ। बस हम जो भी अपने आजीवन निजी कार्य में जो भी कार्यकलाप करते हैं, उसमें हमको कृष्ण को माध्यम में रखकर कार्य करना है। आज यदि मेरे पास बुद्धि ना होती तो मैं ना पढ़ लिख पाता, ना मुझे डिग्री मिलती, ना ही मुझे नौकरी मिलती। कार्य करने का पुरुषार्थ है, तभी मैं 16 घंटा ऑफिस में बैठ के काम कर पा रहा हूं। भगवान गीता में क्या बोलते हैं, ददामि बुद्धि योगम सम, मैं बुद्धि को प्रदान करने वाला हूं, पुरुषार्थों का पुरुषार्थ मैं हूं। यदि भगवान को हमें देखना है तो इसमें देखो, बुद्धिमानों की बुद्धि, यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपके पास आता है तो देखो वो उसकी बुद्धि कितनी प्रखर है, क्योंकि भगवान ने उसको बुद्धि दी है। कार्य करने का पुरुषार्थ उसके पास है, पर वो नेम एंड फेम, नाम और यश गौरव जब अपने ऊपर रहता है कृष्ण को भूलकर, तब उसके हाथों में असफलता आती है। कर्ता धर्ता यदि कृष्ण को माना जाए, अद्वैत आचार्य जी ने यही सिखाया, कृष्ण आए, कृष्ण ने भक्त के रूप में हरि नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया। भक्ति क्या है, जो कि मैंने आपको बताया, आराधना नाम इति वो विष्णु आराधना नाम परम है, आराधना नाम इति राधा, जो भगवान की आराधना करने में सर्वोत्तम हो वो है राधा। और इसीलिए राधा रानी के जो पूजन है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ है। आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भजन रहस्य में कहते हैं जब कृष्ण विरह का आस्वादन करते हैं तो वो हरे हरे करके पुकारते हैं, और जब कृष्ण विरह का आस्वादन करते हैं, राधा रानी विरह का आस्वादन करती है तो वो कृष्ण कृष्ण करके पुकारती है, और जब दोनों मिलते हैं तो वो हरे कृष्ण होता है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो गोलोक का धन है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हमें आज प्राप्त है। वो हर एक की भीड़ बैग में जो माला है वो यही आप महाधन लेकर घूम रहे हो, ये महाधन है। और ये धन हमें किन्होंने दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया। किनके माध्यम से दिया, श्रीपाद अद्वैताचार्य जी के माध्यम से दिया। यदि अद्वैताचार्य जी श्री चैतन्य महाप्रभु को यहां धरती पर उनका आगमन न कराते तो ये महाधन भी हमको न मिलता। 108 मणि है आपकी जपमाला में, वो है 108 गोपियां, और राधा कृष्ण जो है वो तो इस महामंत्र में है ही, और राधा कृष्ण का युगल रूप श्री चैतन्य महाप्रभु ही इस महामंत्र को प्रदान कर रहे हैं। भगवान के कई प्रकार के अवतार हैं, पुरुष अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, युगावतार, मनवंतर अवतार, शक्तावेश अवतार, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु क्या है, भक्तावतार, महाविष्णु भगवान के पुरुष अवतार है, शिव जो है वो गुणावतार है, और उन्हीं का ये युगल रूप है श्रीपाद अद्वैताचार्य। भगवान ने जब इस सृष्टि का संचालन किया, भगवान श्री कृष्ण के यहां से लेफ्ट से राधा रानी प्रकट हुई, फिर श्री बलराम जी प्रकट हुए। बलराम जी से क्या प्रकट हुआ? प्रथम चतुर्व्यूह, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न। फिर प्रथम चतुर्व्यूह के संकर्षण से दूसरा चतुर्व्यूह प्रकट हुआ। फिर दूसरे चतुर्व्यूह के संकर्षण से क्या प्रकट हुए? महाविष्णु, जिन्होंने सांस जैसे बाहर छोड़ी उनके रोम कूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल पड़े। सांस अंदर लिए तो सारे ब्रह्मांड अंदर। तो हर ब्रह्मांड को, हर ब्रह्मांड के भीतर वो गर्भदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं और उस ब्रह्मांड, आधे ब्रह्मांड को अपने पसीने से भर देते हैं, जिसके पसीने को श्वेत कहा जाता है, श्वेतदीप, और नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकलते हैं। फिर चर अचर जगत की रचना है। फिर उसमें कण कण में वो परमात्मा रूप में स्थित होते हैं, वो है शिरोदक्षाय विष्णु। और भगवान श्री कृष्ण जब भी धराधाम पर अवतीर्ण होते हैं वो इस शिरोदक्षाय विष्णु के होकर अवतार होते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग कहते हैं ना कि विष्णु के अवतार, वो ठीक है विष्णु के अवतार हैं, किंतु उसका बैकग्राउंड क्या है? कृष्ण इसके थ्रू, इनके थ्रू आते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वस्य भूतस्य स्थितः, अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंत एव च, कि मैं आध्यात्मिक तथा समस्त भौतिक जगतों का ये इसमें हर जीव के साथ परमात्मा रूप में स्थित हूं तथा उनका आदि मध्य और अंत भी मैं हूं। तो श्रीपाद अद्वैत आचार्य जी का आज जन्म दिवस है, जिन्होंने गौड़ीय वैष्णव परंपरा का सूत्रपात किया, श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन कराया और उनकी वजह से आज महाप्रभु आज हमारे पास, इन्होंने जो महाधन जो दिया। कुछ समय बाद अब नित्यानंद त्रयोदशी भी आएगी, फिर गौर पूर्णिमा भी आएगी, तो यह सारा कार्यकलाप जो हुआ है वो अद्वैत आचार्य जी के द्वारा हुआ है। उनका एक ही कार्य था, भक्ति का ज्ञान लोगों के बीच में बांटना। तो ये शिक्षा हमको अद्वैत आचार्य जी के थ्रू मिलती है कि हम भी जहां जाए, जिससे भी मिले, उनसे कृष्ण के विषय में पूछे, कृष्ण के विषय में बताएं। मान लो, चलो भौतिक उदाहरण के तौर पे मैं आपसे आकर कहता हूं, या सिमेश्वर प्रभु बैठे हैं सामने, सिमेश्वर प्रभु के पास गया, सिमेश्वर प्रभु को बोला, प्रभु जी वो माता जी ना दिखने में बहुत सुंदर है। अच्छा ठीक है प्रभु जी, वो आज मिली बहुत सुंदर है। हाँ ठीक है प्रभु जी, उनका बोलना बहुत सुंदर है। अच्छा ठीक है प्रभु जी, वो हंसती है ना तो गुलाब खिलते हैं। हाँ ठीक है। एक हफ्ते तक उसका गुणानुवर्णन सुनते गए, अंतो तो गत्वा सिमेश्वर प्रभु ने बोल दिया, भाई कौन है मेरे को बता दे। उसी तरह से जितना आप कृष्ण के विषय में गुणानुवर्णन सुनोगे, उतना ही कृष्ण को देखने की इच्छा, वो अनुराग आपके हृदय में प्रकट होगा। रुक्मिणी देवी जब छोटी सी थी, बालिका थी, तब से देवर्षि नारद उनको भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाते थे, और तब जब तक वो बड़ी हो गई तब उन्होंने मन में ठाना, विवाह करूंगी तो इनसे ही करूंगी, ये नहीं देखा कि वो डायमंड मर्चेंट है कि नहीं है, ठीक है ना, वो यही देखा कि भैया ये भगवान है। तो यही मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। मैं आज ही दिल्ली से आया हूं, मनमाली प्रभु जी की कृपा है, वो मेरे शिक्षा गुरु हैं, बॉम्बे का पला बड़ा लड़का, उन्होंने मुझे भक्त बनाया। और जैसे ही मैं आज दिल्ली से आया, प्रभु जी ने मुझे बोला, आज तुम्हें संडे लव फीस लेक्चर देना है। ये मेरा पहला लव फीस लेक्चर है, इससे पहले मैंने कभी नहीं दिया था। जो कुछ मैंने सीखा प्रभु जी के माध्यम से सीखा, जितनी मस्ती मैंने की वो राधा गिरधारी के प्रांगण में की। कई गुजराती कांग्रीगेशन के डिवोटीज मुझे जानते हैं, कईयों के तो नाम भूल गया मैं, 2007-2013। तो आज मुझे सौभाग्य मिला शिष्य जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, राधा गिरधारी, गौर निताय, प्रभुपाद जी और अंततोगत्वा वनमाली प्रभु, इन्होंने मुझे बोलने के लिए आप लोगों के बीच में अवसर दिया। कोई छोटी भूल चूक हो गई हो आप माफ करो, आप सबके सब मेरे से आयु में काफी बड़े हो, किसी को कोई प्रश्न जिज्ञासा पूछ सकते हैं। इन्होंने मुझे टाइम बोला था 10 मिनट पहले खत्म करना, मैंने 15 मिनट पहले खत्म किए। रघुकुल रीत सदा से लिया है, 5 मिनट बोनस।
झगड़ा और ऐसे चलते रहे ना, बट बात बात होते रहते हैं।
इसके
बारे में आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं किस तरह से होते हैं?
मेरा हाथ गौर लीला में उतना साफ नहीं है। मेरा हाथ महाभारत रामायण गर्ग संहिता कृष्ण लीला इसमें साफ है, गौर लीला में मैं बहुत कच्चा हूँ। पर जहां तक आपने प्रभु जी का प्रश्न है कि नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य में थोड़ी सी कभी अनबन हुआ करती थी, भक्तों के बीच में कभी ना वो हंसी मजाक होता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक लीला सुनाता हूँ। महाभारत में भीम और कृष्ण का कभी नहीं जमता था, हमेशा खटकता था। उदाहरण के तौर पे ये इसी से मेरे को वो लीला याद आई। अगर मेरा आपके साथ कुछ खटकाव हुआ वो प्रेम के स्तर पर होगा, हमारी आपस में नहीं बनेगी, पर अंततः अथवा जब प्रसाद लेने के लिए बैठेंगे तो बोलेंगे नहीं वो होता ना तब प्रसाद खाने में मजा है। लड़ू तो किससे लड़ू, लड़ने में भी उसी के साथ आनंद आता है। ये प्रेम का स्तर होता है। जैसे भीम को युधिष्ठिर महाराज ने कहा रासु यज्ञ हम करने जा रहे हैं, यदि यज्ञेश्वर कृष्ण का ही यहाँ उपस्थिति ना होगी तो फिर यज्ञ करने का क्या उपयोग, उनको जाकर आमंत्रण दो। सुबह से निकले रात को पहुंचे थके हारे, भूख भी ज्यादा लगी है भीमसेन को। उनको पता था इनके घर पे जाएंगे तो भाई खाना पीना भरपेट मिलेगा, द्वार का कोई कमी है ही नहीं। भगवान ने बोला सारे पट बंद कर दो दरवाजे, पटरानियां भले क्या भाई जी आ रहे हैं ऐसे बंद कर दो। भीम पसीने से लथपथ भूखा हारा दरवाजा खटखटाते, कृष्ण दरवाजा खोल। सारी पटरानियां खटखटा रहे दरवाजा खोलो ना, बंद रहने तो कुछ नहीं होगा, कोई तूफान नहीं आने वाला, आ गया आने वाला नहीं आ गया। तो कृष्णा दरवाजा खोल, धीरे धीरे भगवान बोले थोड़ा और क्रोध बढ़ने दो। भगवान के पास वो कला थी, वो गैस का नॉब कैसे ज्यादा करना कम करना। लास्ट में भीम को इतना क्रोध आ गया, भगवान ने बोला अच्छा ठीक है थोड़ा सा दरवाजा खोलना, इतना सा खोलना कि वो एक आंख से देख सके। और सत्यभामा को बोला सुबह से लेके शाम तक जो कुछ बना है ना मिष्ठान पकवान सब कुछ टेबल पे रख दो यहाँ। और हल्का सा दरवाजा खोला, भीम एक आंख से ऐसे देखता है, भगवान मिठाई उसको दिखाते और फिर खाते। अब भीम को आया क्रोध, दे मारी दरवाजे पर लात, सारी दास दासियां गिर गई। बोले ये है तेरा अतिथि सत्कार, ऐसा करेगा तू धर्म की स्थापना? अगर तू मेरे बुआ का पुत्र ना होता, हाँ मैं ये ज्यादा भूख लगी है ना तुझे, ये गदा उठा के तेरे गले में घुसे सारा खाया पिया जाएगा, इतनी भूख लगी है तुझे। कृष्ण बोलते अरे जाजा अब मैं दिखाता हूँ लड़ाई किस तरीके से होती है। अरे जाजा घर जवाई कहीं का, कृष्ण की पत्नियों के सामने उनको बोल रहे, किसी ना अपनी पत्नी के सामने कोई घर जवाई बोले तो देखो ना, अरे जाजा घर जवाई कहीं का मुझसे बात कर रहा है। बोले मैं कैसे गर्जा भाई बना? हाँ बकासुर राक्षस का वध किया, हिडिंबा से ब्याह किया, उसी के वन में उसी के साथ रहता है तू। भीम बोलते मुझसे बड़ा गर्जा भाई तो तू है। बोले कैसे? सागर पुत्री लक्ष्मी से विवाह करके सागर में ही लेटा रहता है। तो पता चल रहा है यदि नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य लड़ते भी है वो इस तरह से लड़ते हैं, वो लड़ाई उनकी आम यहाँ इस जगत के भौतिक जगत के ऊपर नहीं है। तो कृष्ण बोलते देखो शास्त्रों में वर्णन इसके शरीर का कोई आकार ना हो, और पटरानिया भी मसाला डाल रही है। अच्छा हाँ, भीम को और गुस्सा आ रहा है, जिसके शरीर का आकार ना हो, जो ज्यादा खाता पीता हो, जो ज्यादा सोता हो, उसके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। भीम बोले सच्ची बात। बोले कैसे? तेरे शरीर का क्या आकार है? कभी कच्छप अवतार, कभी नरसिंह अवतार, कभी वरा अवतार, कभी कुछ है, और तेरे पेट में 14 भुवन 14 ब्रह्मांड भरे पड़े, मुझसे ज्यादा तो तू सोता है चतुर्मास में 4 महीने के लिए, हर महीने के बाद करवट बदलता है। भगवान बोले ठीक है ना, पोतों के सामने क्यों लड़ाई करे, आज हम मिल बांट के खा लेते हैं। ये है भगवान का भक्तों के प्रति उनका आदान प्रदान। सोचो भक्ति कितनी माधुर्यपूर्ण है, रसपूर्ण है, और भक्ति को और रसपूर्ण किसने बनाया? ऐसी भक्ति विदान स्वामी प्रभुपाद ने क्या बोला, सोलह माला करो, चार नियमों का पालन करो, गीता भागवत का अध्ययन करो, मंदिर आओ, वैष्णव की सेवा करो, बस आई विल टेक यू बैक होम बैक टू गॉडहेड, मैं तुम्हें भगवत धाम लेकर जाऊंगा गारंटी। मानदी महाराज दिल्ली में एक लेक्चर दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने बताया कि एक भक्त इस्कॉन का गोलोक पहुंच गया और जैसे ही उसका गोलोक में आगमन हुआ, भगवान अपने आसन से उठ के दौड़े और उसको गले लगाया और भगवान उसके गालों पर हाथ रख के पूछते कि बड़ा टाइम लगाया तूने आने के लिए, चला आ जा अंदर आ, और उसको पूरा गोलोक घुमा रहे। बोले इसके बारे में प्रवचन में तूने सुना था ना, वो ये है, वो ये है, वो ये है। अचानक एक बड़ी सी दीवार सामने आ जाती है, ये दीवार है। भक्त भगवान से पूछता है, प्रभु ये दीवार क्या है? कृष्ण क्या बोलते हैं, इस दीवार के पीछे इस्कॉन है। तो सोचो कि हम गोलोक के कहां खड़े हैं। प्रभुपाद जी ने जो हमारे लिए प्रणाली प्रभुपाद जी ने जो हमको दी है कितनी सरल है, बस दीवार फांद के कूदना है। बचपन में कूदते थे ना दीवार फांद के, अभी भी कूद जाओ, और कूदने की विधि भी बताई है, और इतनी सरल है भक्ति। अद्वैताचार्य यदि ना होते तो श्री चैतन्य महाप्रभु ना आते, श्री चैतन्य महाप्रभु ना होते यहाँ चंड गोपी प्रभु मेरे सामने खड़े। जब मैं यहाँ मंदिर में रहता था, मेरे रूम में जब आते थे सुबह सुबह, एक भजन गाया करते थे, पूरा भजन मुझे याद नहीं है पर वो गाते थे वो याद है, गौर गाओ शुमी, यदि गौर न हो तो तबे की हो तो। देखो प्रभु जी हंस रहे हैं, तो प्रभु जी के मुंह से जो सुना था इतने सालों बाद वो एक ही लाइन मुझे याद है और आज इस लेक्चर के थ्रू याद आ रही है। यदि अद्वैत आचार्य न होते तो चैतन्य महाप्रभु न होते, और चैतन्य महाप्रभु यदि हरिनाम देकर न आते तो श्रील प्रभुपाद आज हमारे बीच में न होते। भगवान ने सीधे बोले इस दीवार के पीछे इस्कॉन है, बस। जैसे नताशा पार्क की दीवार है, इसके पीछे राधा गिरधारी मंदिर है, सिंहेश्वर प्रभु कभी भी कूद के आ जाते हैं, वैसे हमको कूद के गोलोक भी जाना है। यही मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं, 10 मिनट फिर भी मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं। श्रीपाद अद्वैताचार्य की, श्री राधा गिरधारी भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, पतित पावन निताय गौर सुंदर भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अच्छा, और 10 मिनट बोलने के लिए प्रभु जी बोल रहे हैं। मैं आपको दो चीजें आज सुनाता हूं 10 मिनट में। आप लोग प्रचार के लिए जब भी जाते हो, ज्यादातर लोग प्रचार करते वक्त दो सवाल आपको पूछते हैं, कृष्ण गोपियों के साथ रास क्यों करते थे भाई, अगर वो भगवान है तो, है कि नहीं? और जब सीता महारानी गर्भवती थी तो भगवान ने उनका परित्याग क्यों किया था, पूछते हैं कि नहीं? दे दूं उनके बाद आज आपके पास ब्रह्मास्त्र आ जाएगा। पहले कौन सा सुनना है, गोपियों का सुनना है सीता महारानी का सुनना है? गोपियों का सुनना है। ये कथा गर्ग संहिता की आती है, भगवान श्री राम जब सीता को महारानी को से ब्याह करते अयोध्या वापस आए, तो जाने से निकलने से पूर्व मिथिला की जो राजकुमारियां थी कन्याएं, वो भगवान के पास आकर बोलती है, आप भी हमको पत्नी के रूप में ग्रहण करो ना। भगवान राम कहते इस अवतार में नहीं, अगले अवतार में वृंदावन में प्रकट होना, वहां मैं मिलूंगा। अयोध्या में आते हैं, अयोध्या की कन्याएं भी यही बोलती हैं, ले जाओ ना तुम्हारे साथ है। नहीं नहीं, पची आपसे वृंदावन, वृंदावन में आ जाओ, ठीक है। फिर इसके बाद भगवान राम को वनवास होता है, वनवास में वो भीलनियों के पास आते हैं, भीलनियां तो उनको देखकर ही प्राण त्यागने के लिए खड़ी हो जाती हैं। भगवान बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं प्राण मत त्यागो, अगले अवतार में वृंदावन में आना, ठीक। अब यहां से वो दंडकारण्य जाते हैं, तो करोड़ों वर्षों से जो ऋषि मुनि भगवान के गोपाल वेश का ध्यान कर रहे थे, गोपाल वेश क्या, मोर पंख, बांसुरी, कंधे पर चद्दर, हाथ में वेद, भगवान राम को आते देखकर हक्का बक्का होते, बोले प्रभु ये क्या, बांसुरी कहाँ है, मोरपंख कहाँ है, धनुष? बोले ये मेरे अग्रज सॉरी अनुज लक्ष्मण, ये मेरी भार्या सीता, और ये मेरा धनुष कोदंड, कठोरता पूर्वक जो दंड देता हो वो कोदंड। भगवान के धनुष का नाम कोदंड है। मैं इस समय राम अवतार में आया हूं, आपकी मंशा को जानता हूं, आप लोग वृंदावन में पहुंचा। वो सारे ऋषि मुनि वृंदावन में प्रकट हुए गोपियों के रूप में। इसके बाद जब भगवान आए, सीता को जीता, फिर परित्याग भी हुआ, फिर भगवान ने 1000 यज्ञ किए थे, तो हर यज्ञ में सीता की सोने की मूर्ति आती थी, नई बनती थी। एक रात को सारी मूर्तियों में प्राण आ गए और सारी मूर्तियां भगवान राम के पास आकर बोलती हैं, हमारा नाम भी मिथिलेश कुमारी के साथ जुड़ा हुआ है, हमने भी उसी व्रत का पालन किया जिस व्रत का उन्होंने पालन किया, हमको भी पत्नी रूप में ग्रहण करो। बल नहीं, अगले अवतार में आ जाओ। इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है। सीता की परछाई तक को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, सीता माने सिर्फ सीता। तो ये सारी गोपियां जो है वो वृंदावन में आई। गोपी का शरीर उसको मिलता है जिन्होंने 100 जन्मों तक अपनी काम वासना पर नियंत्रण रखा हो, उसको गोपी का शरीर मिलता है, क्योंकि वहां काम नहीं है, वहां प्रेम है। और उसका जो परवर्टेड रिफ्लेक्शन इस भौतिक जगत में है, प्रतिबिंब है, वो है काम। तो आपको पता चल गया अभी गोपियां कौन है, क्या है, ठीक है। सीता महारानी बहुत छोटी थी, 12 साल की थी। एक बार उनके आंगन में 2 तोते उड़ते हुए आ गए और वाल्मीकि रामायण के श्लोक बोलने लग गए। राम का गुणानुवर्णन सुन के सीता बहुत खुश हो गई, आहा कितना सुंदर है। अब जो मादा तोता थी वो बोलती है, मुझे कुछ बच्चों को जन्म देना है, अपने बच्चों को जन्म देना है, मुझे जाने दो, मैं फिर आऊंगी, फिर कथा सुनाऊंगी। सीता बोली, नहीं बैठो, कथा सुनाओ, बाद में जाओ। छोटी सी सीता जानती थी, बालिका थी, हट धर लिया। अंत में सीता ने बोला, ठीक है तुम्हारा पति यहां बैठेगा, तुम जाओ। पति से वियोग उस मादा तोता को सहन न हुआ और उन्होंने सीता को श्राप दे दिया। हालांकि श्राप उनको लगता नहीं है, पर एक लीला थी, यह भगवान की प्रायोजित पहले से ही डिसाइडेड योजना है। क्या? कि जैसे तुमने मेरी गर्भावस्था में मुझे मेरे पति से वियोग प्रदान किया है, पत्नी जब गर्भवती होती है, अपने बच्चे को जन्म देने वाली है, परिवार का कोई सदस्य हो या ना हो, किंतु पति चाहिए बाजू में, चाहिए कि नहीं, साची बात बोलवा उन्होंने बस। तो उस समय बोले, जैसे मैं आज अलग हूं वैसे तुम भी वियोग सहन करोगी, और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तोता आकाश में उड़कर बोला, मैं ये देखूंगा ये श्राप सत्य होता है। और यही मादा तोता और नर तोता आगे चल के अयोध्या में धोबी और धोबन के रूप में आए, और उन्होंने रामचंद्र जी के गुप्तचर थे उनके सामने नाटक किया बोलकर, अरे मैं राम नहीं हूं, ताकि वो बात राम के कान में पहुंचे। तो इसीलिए भगवान राम ने परित्याग किया था। तो आपको पता चल गया अभी, हाँ? कोई अगर आपको कोई पूछे तो आप लोग, आप सबको जितने भी भक्तियां उपस्थित है, चाहे माताएं हो चाहे प्रभु जी हो, इवन हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में कई माता गुरु हुए, नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा माता गुरु है, गंगा माता गोस्वामिनी गुरु है। वैसे चाहे माता जी हो चाहे प्रभु जी हो, सबको कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है, जनमानस के बीच में कृष्ण भक्ति का दान देना है, लोगों को भक्त बनाना है और प्रत्येक जीव को कृष्ण से जोड़ना है, ठीक है। 10 मिनट डॉट पूरे हो गए, मैं वचन का पक्का हूं प्रभु जी। शिष्य राधा गिरधारी भगवान की जय।
जो कि अभी दिल्ली में राजा भट्टाचार्य के मंदिर में चलते हैं।